તારીખ 12/5/1992 શ્રી સમયસાર કળશ ટીકા શ્લોક 29 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 20 મૂળ કેસેટમાં હમિંગનો અવાજ આવે છે.
અનવમ અપરભાવ ત્યાગ દ્રષ્ટાંત દ્રષ્ટિ ઝટતિ સકલ ભાવૈઃ અન્ય દિયૈઃ વિમુક્તા સ્વયં યમ અનુભૂતિ સ્તાવત આવિર્બભૂ. ખંડાન્વય સહિત અર્થ. યમ અનુભૂતિ તાવત ઝટતિ સ્વયં આવિર્બભૂ. યમ અર્થાત યહ વિદ્યમાન, યહ વિદ્યમાન અનુભૂતિ, અનુભૂતિ અર્થાત શુદ્ધ ચૈતન્ય વસ્તુ કા પ્રત્યક્ષ જાણપણા, પરોક્ષ જાણપણા નહીં, શુદ્ધ ચૈતન્ય વસ્તુ અપના આત્મ સ્વરૂપ હૈ ઉસકો પ્રત્યક્ષ કરકે જાણે, અપના કો અપન ખુદ પ્રત્યક્ષ કરકે જાણે ઉસકા નામ અનુભવ હૈ, અનુભૂતિ, અનુભવ કી ક્રિયા. યહ વિદ્યમાન શુદ્ધ ચૈતન્ય વસ્તુ કા પ્રત્યક્ષ જણા, પ્રત્યક્ષ જાનપણા, જાનપણામાં અહીંયા વેદન લેના, પ્રત્યક્ષ વેદન. ઉતને કાલ તક તાવત, મેને ઉતને કાલ તક, ઉસી સમય, મેને તત્કાલ, સ્વયં સહજ અપને પરિણમન રૂપ પ્રગટ હુઆ, આવિર્ભવો, મેને આવિર્ભૂત હુઆ, આવિર્ભૂ બહુ, મેને આવિર્ભૂ, મેને આવિર્ભવ, આવિર્ભૂત હુઆ, પ્રગટ હુઆ. શું કહે છે કે શુદ્ધ ચૈતન્ય વસ્તુ કા પ્રત્યક્ષ અનુભવ તત્કાલ હી સ્વયં પ્રગટ હુઆ. ઇતના કહા, ઉસકો અનુભૂતિ કહેતે હૈ શાસ્ત્ર પરિભાષા મેં, ઉસકો અનુભૂતિ, અનુભૂતિ કે આત્માનુભૂતિ કહો યા અનુભૂતિ કહો. કૈસી એવો અનુભૂતિ કે અન્ય દિય હે સકલ ભાવ હે વિમુક્તા. અન્ય દિય હે કે અર્થ હૈ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ સે અત્યંત ભિન્ન એસે દ્રવકર્મ ભાવકર્મ નો કર્મ સંબંધી સકલ અર્થાત જીતને હે વેદ પ્રભેદ ગુણસ્થાન માર્ગણાસ્થાન રૂપ જો રાગ દ્વેષ મોહ ઇત્યાદિ અતિ બહુત વિકલ્પ, વિકલ્પ મેને ભેદ પ્રભેદ એસે જો ભાવ અર્થાત વિભાવ પરિણામ ઉનસે સર્વથા રહિત હૈ. ક્યા કહેતે હૈ કે સ્વાનુભૂતિ કૈસી હોતી હૈ, અનુભૂતિ મેને સ્વાનુભૂતિ કૈસી હોતી હૈ કે શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ સે જો ભી ભિન્ન હૈ ઉનસે રહિત હોતી હૈ. શુદ્ધ ચૈતન્ય વસ્તુ અપના આત્મ સ્વરૂપ હૈ ઉનસે જો ભી ભિન્ન હૈ વો આત્મ સ્વરૂપ કે અનુભૂતિ હોને સે યે અનુભવ ભી સર્વ સબસે ભિન્ન હૈ રહિત હૈ. તો સકલ, સકલ ભાવ કા અર્થ કર દિયા, અન્ય ભાવ, સકલ અન્ય ભાવ કે સકલ અન્ય ભાવ કૈસા હૈ કે દ્રવ કર્મ સંબંધી હૈ, ભાવ કર્મ સંબંધી હૈ ઓર નો કર્મ સંબંધી. દ્રવ કર્મ મેને નાનાવરણી દર્શનાવરણી આદિ પ્રકૃતિ આયુષ પર્યંત આઠો આઠ. ભાવ કર્મ મેને અપને વિભાવ, ભાવ રાગ દ્વેષ મૂર્તિ અરુતિ જગુત્સવ આદિ ઓર નો કર્મ શરીર આદિ સંયોગ. એ સકલ ભાવ હૈ ઉસકે જીતને ભી ભેદ હો, ગુણસ્થાન રૂપ ભેદ હો, માર્ગણાસ્થાન રૂપ ભેદ હો, કોઈ ભી ભેદ હો, और जितने भी राग द्वेष मोह इत्यादि जितने भी भेद प्रभेद विकल्प जो है इनसे रहित है, सर्वथा रहित है। मुक्ता विमुक्ता, मुक्त मैंने रहित, विमुक्त है सर्वथा रहित, कोई संबंध नहीं अनुभूति को। अनुभूति तो चतुर्थ गुण स्थान से गिनी जाती है, तो चतुर्थ गुण स्थान से गिनी जाती है वो आगम पद्धति से, क्योंकि गुण स्थान आगम पद्धति का विषय है। अध्यात्म पद्धति से गुण स्थान अनुभूति में नहीं है, अनुभूति में गुण स्थान नहीं है। 50 से 55 गाथे में यही बात लिया है कि गुण स्थान क्यों आत्मा का नहीं, कि अनुभूति से भिन्न है इसलिए। क्या शब्द लिया है? मार्गना स्थान क्यों आत्मा का नहीं, कि अनुभूति से भिन्न है इसलिए। जीव स्थान आत्मा का क्यों नहीं, कि अनुभूति से भिन्न है, भिन्न है इसलिए। देखो ऐसी बात है, हाँ माँ माँ अध्यात्म स्थान मैंने ये अनुभूति नहीं, वहाँ अध्यात्म स्थान मैंने वहाँ कोई अध्यवसान ऐसी कोई बात लिया है, वो कोई शुद्धात्मा का अनुभव नहीं लिया है, वहाँ दूसरा अर्थ किया है तो ख्याल नहीं। तो बाह्य चारित्र का पेज है ना पूरा, वो सब लिया है वहाँ। संयम का जो भेद है बाह्य चारित्र का, वो सब लिया है अध्यात्म स्थान। भावार्थ इस प्रकार है कि जितने भी विभाव परिणाम स्वरूप विकल्प है ना, जितने भी विभाव परिणाम स्वरूप द्रव्य भाव जो भी है, अथवा मन वचन से उपचार कर द्रव्य गुण पर्याय भेद रूप या उत्पाद वे द्रव्य रूप भेद रूप विकल्प है, उनसे रहित शुद्ध चेतना मात्र का आस्वाद रूप नान, उसका नाम अनुभव कहा जाता है। अस्पष्ट बात करो, भावार्थ करो, इतनी बात न सुन जे अन्य दिए है सकले भाव है विमुक्ता, एनो भावार्थ करे छे। इस भावार्थ इस प्रकार है कि जितने भी विभाव परिणाम रूप विकल्प हैं, अथवा मन वचन से उपचार कर द्रव्य गुण पर्याय भेद रूप विकल्प आता है मन से, या उत्पाद वे ध्रुव रूप आत्मा का भेद रूप विकल्प आता है, उससे रहित शुद्ध चेतना मात्र का आस्वाद रूप, अभेद शब्द ही नहीं लिखा, शुद्ध चेतना मात्र का आस्वाद रूप वेदन रूप जो ज्ञान है, आस्वाद रूप आगे जान पना लिया, यहाँ कहते हैं कि आस्वाद रूप जो ज्ञान, आस्वाद मैंने वेदन रूप जो ज्ञान, उसका नाम अनुभव कहा जाता है, उसी को अनुभव कहने में आता है। खोली नहीं, साफ स्पष्ट करने कलष्टिका मान विषय एकदम खोली नहीं, अध्यात्म नो विषय स्पष्ट करेला छे।
आस्वाद रूप ज्ञान स्वसंवेदन रूप ज्ञान
कहवाई, आस्वाद रूप ज्ञान मैंने स्वसंवेदन रूप ज्ञान, आस्वाद मैंने वेदन, संवेदन मैंने स्वयं का वेदन, तो स्व संवेदन हो गया, स्वयं का स्व का स्वयं का अच्छी तरह अनुभव में आवे ऐसा वेदन, उसको स्व संवेदन कहने में आता है, वो आस्वाद रूप ज्ञान है, उसको ही अनुभव कहने में आता है। वह अनुभव जिस प्रकार होता है उसी को बतलाते हैं, वो अनुभव किस प्रकार होता है, अभी तो जीव विकल्प में है और विकल्प में भी अनेक प्रकार के संयोग का विकल्प चलता है, यहाँ से हटकर आत्मा का विकल्प चलता है, तो जहां तक विकल्प में है वहां तक अनुभव नहीं है, ये कहेंगे इधर कि यावत अपर भाव त्याग दृष्टांत दृष्टि अत्यंत वेगात अनवम वृत्ति न अवतरते। जितने काल तक यावत जितने काल तक ज्या सुधी आपने गुजराती मान जिस काल में एट जयरे अपर भाव शुद्ध चेतना मात्र से भिन्न ऐसा द्रव कर्म भाव कर्म और नो कर्म उस रूप जो समस्त भाव उनके ये भाव समस्त झूठे हैं, जीव के स्वरूप नहीं है, न द्रव कर्म रूप जीव का स्वरूप है, न भाव कर्म जीव का स्वरूप है, न नो कर्म जीव का स्वरूप है, ये समस्त झूठे हैं, जीव के कहलाते हैं फिर भी झूठे हैं, जीव के स्वरूप नहीं है, बिल्कुल जीव के स्वरूप नहीं है, ऐसे प्रत्यक्ष आस्वाद रूप ज्ञान के सूचक उदाहरण के समान उदाहरण देंगे। अभी उदाहरण का बात करेंगे। दृष्टांत दृष्टि ऐसा लिया ना, तो दृष्टांत मैंने कौन का दृष्टांत, ऐसे प्रत्यक्ष आस्वाद रूप ज्ञान के सूचक उदाहरण के दृष्टांत उदाहरण के समान एक दृष्टांत है, बहुत सरस है पूछा, लगभग 34वीं गाथा ऊपर है त्या दृष्टांत आपेलो है, दृष्टांत नु वर्णन करे छे। विवरण विवरण एटले वर्णन, जैसे किसी पुरुष ने धोबी के घर से अपने वस्त्र के धोखे से दूसरे का वस्त्र जानने पर बिना पहचान के उसे पहनकर अपना जाना, क्या हुआ एक मिल का कपड़ा हो जैसे धोती और एक कलर का किनार हो उसका, धोबी क्या करता है कि वो बदल नहीं जावे एक दूसरे में, एक दूसरे का नहीं चला जावे, ऊपर निशान कर लेता है, तो ये निशान आपका, ये आपका कपड़ा है, तो ऐसा पहचान किए बिना उसको पहना। बाद में उस वस्त्र का धनी जो कोई था उसने अंचल पकड़ कर कहा क्यों है इन्हें जो आ तो मारू नहीं आप छे मारा जेवु मेरा कपड़ा नहीं है, तो किससे बदल गया, तो एक दूसरा जो मेरा ग्राहक है अपना पड़ोस वाला तुम्हारा शायद इनसे बदला हो, तो बदला हो तुम तलाश कर लो, मैंने देखा कि ये तो उसने पहना हुआ है, तो उसने अंचल पकड़ करके मैंने छेड़ा क्या। बाद में वस्त्र का धनी जो कोई था उसने अंचल पकड़ करके एक आंचल छेड़ो पकड़ी ने कहा कि यह वस्त्र तो मेरा है, पुनः कहा कि मेरा ही है, निशान जो लीधो यहाँ का कपड़ो मारू छे मारू छे जो निशान। ऐसा सुनने पर उस पुरुष ने चिन्ह देखा, जाना कि मेरा चिन्ह तो मिलता नहीं, इससे निश्चय से यह वस्त्र मेरा नहीं है दूसरे का है, उसको ऐसी प्रतीति होने पर त्याग हुआ घटित होता है, स्वामित्व उठ गया, कपड़ा तो बदलेगा जब उनको देगा, चिन्ह देखा इस वक्त कपड़ा दिया नहीं पहना हुआ ही है, लेकिन चिन्ह देखा कि ये मेरा चिन्ह नहीं है तो ये कपड़ा भी मेरा नहीं है, इसका प्रतीति खात्री हो गया, तो कपड़ा नहीं दिया है पहना हुआ है फिर भी कपड़े माँ कपड़े का स्वामित्व रहा नहीं, तो कपड़े का त्याग हो गया। जिसको स्वामित्व उठ गया वो फिर वो कपड़ा फिर रखने वाला नहीं है, तो फिजिकल जो त्याग है वो बाद में होगा। त्याग कैसे होता है कि पहले ज्ञान में अध्यास का त्याग हो जाता है, फिर बाद में वस्तु का त्याग होता है, इसके पहले कभी होता नहीं है, और होता है तो वो सही नहीं है यथार्थ नहीं है, ये बात है। પહેલો જ્ઞાનમાં એનું પોતા પણ ઉઠી જાય, સ્વામિત્વ ઉઠી જાય છે, કાચી જ મારી નથી. उसको ऐसी प्रतीति होने पर त्याग हुआ घटित होता है. वस्त्र पहने ही है तो भी त्याग घटित होता है. वस्त्र पहरी राखेलू छे तो पण एने एने त्याग घटे छे, क्योंकि स्वामित्वपणा छूट गया है. उसी प्रकार अनादि काल से जीव मिथ्या दृष्टि, ये तो दृष्टांत छे, हमें सिद्धांत ले छे. उसी प्रकार अनादि काल से जीव मिथ्या दृष्टि है, इसलिए कर्म संयोग जनित है जो शरीर, सुख दुख ये पूर्व कर्म का संयोग, अनुकूल प्रतिकूल, राग द्वेष आदि विभाव पर्याय, उन्हें अपना ही कर जानता है, उन्हें अपना ही कर जानता है. क्या मारू छे शरीर, मारू छे આ ઉદય મારો છે, રાગ દ્વેષ મેં કર્યા છે, મારામાં થાય છે, પર ઉની રૂપ પ્રવર્તા હે, મેં રાગે હું, દ્વેષી હું, ગ્રસ્તી હું, વૈસા હું, વૈસા હું, એસા પ્રવર્તા હે. હે ઉપાદે નહીં જાનતા હે, ક્યા ભૂલ ક્યા હે, હે ઉપાદે કો નહીં જાનતા હે. જો હે હૈ ઉસકો ઉપાદે જાનતા હે, ઓર ઉપાદે જો હૈ ઉસે અનજાન હૈ, સ્વરૂપ છે અંજાન. ઇસ પ્રકાર અનંત કાલ તક ભ્રમણ કરતે હુએ, ઉસ પ્રકાર સંસાર મે અનંત કાલ તક ભ્રમણ કરતે હુએ, જબ થોડા સંસાર રહેતા હૈ, કિતના થોડા, કિસી કો અલ્પ સંસાર રહે ગયા, જબ થોડા સંસાર રહેતા હૈ और परम गुरु का उपदेश प्राप्त होता है, अकेला नहीं मिलता मार्ग. जब इसका संसार का भी अवधि कम है बाकी, और उसको कोई गुरु का भी उपदेश का योग मिलता है, तो एक ही आवे नहीं. बात तो जो है सो आएगी, उपदेश ऐसा, क्या उपदेश मिलता है, उपदेश ऐसा कि वो जीव, अरे जीव, जितने हैं जो शरीर, सुख दुख राग द्वेष मोह, जिनको तू अपना कर जानता है और इनमें रत हुआ है, वे तो सभी तेरे नहीं है, वे कुछ तेरे नहीं. जिसको जिसको तू अपना जानता है, शरीर परिवार अनुकूल प्रतिकूल संयोग राग द्वेष मोह, वो सब तेरे, तेरा स्वरूप ही ऐसा नहीं है, तू तो एक ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, ये तो सब तेरे, तेरी जात के साथ कोई मेल खाते नहीं है. अनमिलते परिणाम है, अनमिलते भाव, अनमिलते द्रव है, वे सब तेरे नहीं है. अनादि कर्म संयोग की उपाधि है, तेरे नहीं है तो क्या है, कि तेरी तो ये उपाधि है. जैसे किसी को बोलते हैं ना, ये कैसा है कि शास्त्री है, ये न्याय विशारद है, धार्मिक में है, ये उपाधि है, ये बीए है, एमए है, फलाना है, ये सब उपाधि है, उनका स्वरूप नहीं है. ऐसे मैं शरीर वाला उपाधि, मैं घर वाला, ये सब उपाधि है. अनादि कर्म संयोग की उपाधि है, ऐसा बार बार सुनने पर जीव वस्तु का विचार उत्पन्न हुआ. फिर मेरा स्वरूप नहीं है तो जीव कैसा है, कि जीव का लक्षण तो शुद्ध चिद्रूप है, शुद्ध चैतन्य, एकला शुद्ध, शुद्ध मैंने अकेला चैतन्य है. इस कारण यह सब उपाधि तो जीव की नहीं है, कर्म संयोग की उपाधि है. ऐसा निश्चय जिस काल हुआ, कैसा निश्चय, मैं एक शुद्ध चिद्रूप हूं, ऐसा निश्चय जिस काल हुआ, उसी काल सकल विभाव भावों का त्याग है, त्याग हो गया उसको, अध्यास का त्याग हुआ ना, इसलिए त्याग हो गया। कि कोई शुद्ध चिद रूप के अलावा जितने भी द्रव्य है भाव है वो अन्य दिए ये है, वो तो दूसरों का है मेरा नहीं है, बस
एक
है। हाँ क्या कि ऐसा निश्चय जिस काल हुआ उस ही काल, क्या उस ही काल तत्काल, पीछे पीछे नहीं, धर्म का फल उधारी में नहीं होता, उसी काल धर्म का फल मिलता है। जिस काल उसी काल सकल विभावों का त्याग है, शरीर सुख दुख जैसे ही थे वैसे ही है, वो तो पूर्व कर्म की अवस्था है, वो तो वैसे ही रहेगा, जैसे कपड़ा तो पहना हुआ ही रहा, लेकिन ये मेरा नहीं है ऐसा भाषित हुआ तो त्याग हो गया है। ऐसा पूर्व कर्म तो वैसे ही रहेगा, घर मकान परिवार सब वैसे के वैसे रहेगा, ये बताया कि शरीर सुख दुख मैंने अनुकूल प्रतिकूल से ही जैसे ही थे वैसे ही है, परिणामों में त्याग है, परिणाम में जान लिया मेरा स्वरूप ऐसा है ही नहीं, क्योंकि स्वामित्वपणा छूट गया, स्वामित्वपणा छूट गया, इसी का नाम अनुभव है, इसी का नाम सम्यक्त्व है, बस ये बात है। अपना
शिवानी जी को हुआ,
हाँ ऐसे संसार आएंगे, वो तो कैसा है कि ज्ञान तो भीतर में होता है, कहाँ होता है, भीतर में आत्मा है वहाँ ज्ञान आत्मा का होता है, और आत्मा का ज्ञान होवे इतने संयोग के पर्याय बदल जावे ऐसा तो बनता नहीं, वो तो जैसा है वैसा रहेगा, परिवार है वो वैसा का वैसा रहेगा, मकान वैसा का वैसा रहेगा, कपड़ा वैसा का वैसा रहेगा, शरीर वैसा का वैसा रहेगा, निर्धनता हो तो वैसी रहेगी, सधनता हो तो भी वैसी रहेगी, उसमें तो कोई फेरफार होने वाला नहीं है, वो खुद अलग हो गया भीतर में। इस जगत में मेरा कोई सगा संबंधी नहीं है, मैं किसी का कोई सगा संबंधी नहीं, जा खत्म, कहने मात्र सब बातें, पड़ोसी को बोलेगी मेरे चाचा जी है, कहने मात्र है, कोई लेना देना नहीं है,
है?
कर्म कर्म में रह गया, नो कर्म में रह गया, और स्वरूप स्वरूप में रह गया, बस स्वरूप स्वरूप में रहा, कोई भिन्न हो गया, भिन्न है वो सब भिन्न जानने में अनुभव में आ गया, बात खत्म।
बंगलो
मैंने छुट्टी क्यों नहीं सही करी दस्तावेज ऊपर है, पछी बात पूरी थी गई कि नहीं, पी ए बंगला की दीवाल तूटी जाए है तो एने कहीं लगे नहीं, केम मारो नहीं, बस तारो नहीं तो पहला तारो हतो आ सवाल से मत, मेरा पणा लगता था वो नहीं लग रहा है, बेच दिया इसलिए नहीं लग रहा है, और ज्ञानी नहीं बेचते फिर भी नहीं लग रहा है कितना फर्क है, वो बेचता नहीं है, नहीं बेचा है तो भी उनको अपना लगता नहीं है, उसको लगता है कि ये एक धर्मशाला का मकान है, कुछ दिन उसमें रहना है, बाकी मेरा फिरा कुछ है
नहीं।
और ऐसे ही ये शरीर कि ये भी एक धर्मशाला है, उसमें भी थोड़ा दिन रहना है, फिर मेरा कोई मेरी चीज है
नहीं।
बात खत्म। दुख मिट जाता है, ममत्व मिट जाने से दुख मिट जाता है,
दुख मिट जाता
है। ममता उतना दुख, कितना दुख?
ममता,
जितनी ममता उतना दुख। बस सीधी सादी बात इतनी है। तो अनुभव होने से सुखी हो गया, अपना भिन्न अनुभव होने से सुखी हो जाता है। इस प्रकार दृष्टांत के समान उत्पन्न हुई है दृष्टि, दृष्टि अर्थात शुद्ध चिद्रूप का अनुभव। दृष्टि का अर्थ क्या? शुद्ध चिद्रूप का अनुभव, क्योंकि दोनों एक साथ होता है, सम्यक दर्शन और स्वानुभव एक साथ होता है। जिसके ऐसा जो अनुभव, जिसको उत्पन्न हुई है दृष्टि और अनुभव, जिसके ऐसा जो कोई जीव है, वो अनादि काल से चले आ रहे हैं कर्म पर्याय के साथ एकत्वपणे के संस्कार तद्रूप नहीं परिणमता है, वो संस्कार उसका छूट गया। मैं फलाना मानव हूँ, मनुष्य हूँ, ऐसा संस्कार छूट गया। मैं आत्मा हूँ ऐसा लगता है, मैं फलाना मनुष्य हूँ, वो संस्कार उसको छूट जाता है। ये हुआ ना वो भेड़ियों के टोले में सिंह का बच्चा था, गेटाना टोला माँ सिंह का बच्चा था। तो उसने अपना मुंह देखा, ओ मैं तो सिंह हूँ, त्राड़ लगाई, सब भागने लगे, अरे कोई सिंह आया है। वो खुद नहीं भगा, क्योंकि उसका संस्कार छूट गया। मैं घेटा भेड़िया था, वो संस्कार उसका छूट गया, और था भी नहीं वो। वैसे कोई मनुष्य होता नहीं, कोई त्रियंच होता नहीं, सब आत्मा ही है। अपना ज्ञान दर्पण में अपना मुख देखा, स्वभाव देखा, पता चला करे मैं तो ज्ञान स्वरूप ही आत्मा हूं। संस्कार छूट जाता है, उसका संस्कार छूट जाता है। मनुष्य हूँ, वो संस्कार छूट जाता है। भगवान आत्मा हूँ ऐसा लगता है, तो क्या भगवान
आत्मा?
तो ऐसे अनुभव जिसको है, ऐसा जो कोई जीव है, वो अनादिकाल से चले आ रहे कर्म पर्याय के साथ एकत्वपणे के संस्कार तद्रूप नहीं परिणमता है। गति के नाम कर्म से जो मनुष्य गति मिली है, वो कर्म की पर्याय है, जीव की नहीं है। जीन सो ही है आत्मा, अन्य हो सो कर्म। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो जीन स्वरूप ही हूँ, मनुष्य प्रणाम तो ये अन्य है, कर्म है। ये कर्म प्रसंग है, जीव का स्वरूप नहीं है, बस कर्म प्रसंग है वो। तो एकत्व संस्कार रूप नहीं परिणमता है, इसका भावार्थ इस प्रकार है कि कोई जानेगा कि जितना भी शरीर सुख दुख राग द्वेष मोह है, उसकी त्याग बुद्धि कुछ अन्य है, कारण रूप है, तथा शुद्ध चिद्रूप मात्र का अनुभव कुछ अन्य है, कार्य रूप है। उसके प्रति उत्तर इस प्रकार है कि राग द्वेष मोह शरीर सुख दुख आदि विभाव पर्याय रूप परिणत हुए जीव का जिस काल में ऐसा अशुद्ध परिणाम रूप संस्कार छूट जाता है, उसी काल में इसके अनुभव है। कहते हैं क्या उसमें न्याय क्या है कि कोई ऐसा जाने कि पहले ये जो एकत्व का संस्कार है छूटे तो अनुभव होवे। जो अज्ञान का नाश होवे तो ज्ञान होवे। तो ये कारण और ये कार्य, तो ऐसा नहीं है, एक ही काल में है। प्रकाश होता है, अंधकार चला जाता है। पहले अंधकार चला जाए तो प्रकाश आवे, ऐसा बनता नहीं है, कोई समय ऐसा नहीं बनता। प्रकाश आने पर अंधकार रहता ही नहीं, उसी समय पहले अंधकार जाए फिर प्रकाश आवे, ऐसा बनता नहीं है। इसलिए कारण कार्य का नाम बोल दिया पहले पीछे नहीं है, कहने का मतलब क्या है कि पहले पीछे
नहीं है,
नहीं है। इसलिए कहा कि जो जिस परिणाम अशुद्ध परिणाम संस्कार छूट जाता है उसी काल में इसका अनुभव है। उसका विवरण है कि जो शुद्ध चेतना मात्र का आस्वाद आए बिना अशुद्ध भाव रूप परिणाम छूटता नहीं, और अशुद्ध संस्कार छूटे बिना शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता नहीं, दोनों एक साथ बनता है। शुद्ध चित्त रूप का अनुभव होवे और अज्ञान का संस्कार भी रहे ऐसा नहीं बनता, और अज्ञान का संस्कार जाए तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव होवे ऐसा भी नहीं बनता, ये दोनों एक साथ बनता है। स्वरूप ज्ञान की अष्टि हुई, अज्ञान की नास्ति हो गई, उसी काल तो एक ही काल है, एक ही समय है, एक ही पर्याय है, एक ही वस्तु है, एक ही अनुभव है, एक ही स्वाद है। आगे ये कलश का यहाँ पूरा कर दिया, जो बात है वो कलश की वो इधर पूरी कर दी। आगे तो नए कलश में जिसका शुद्ध अनुभव हुआ है वह जीव कैसा है, जैसा है वैसा ही कहते हैं। तो जिसको ऐसा अनुभव हुआ तो अनुभवी जीव कैसा होता है उसका वर्णन अभी करेंगे 29वें कलश में। वो बात लिया कि जैसा ही अनादि से चला आया अज्ञान का संस्कार छूटा उसी काल में अनुभव है, और जैसा अपना अनुभव का किया उसी काल में संस्कार अज्ञान का छूट जाते हैं, उसमें आगे पीछे कभी बद्दा नहीं है। बस ये एक मुद्दा पर सारा कलश है। सम्यक दर्शन और स्वानुभव होता है तो मिथ्या श्रद्धा और अज्ञान मिट जाता है। मिथ्या श्रद्धा और अज्ञान मिटे और स्वानुभव नहीं हुए, बाद में हो गए हुए, ऐसा कभी बनता नहीं। बस ये एक मुद्दा पर सारा श्लोक लिखा है।
ज्ञान हुआ और अपना नाश हुआ, नहीं हुआ तो नाश हुआ,
बस नाश हुआ,
तो बात हुआ।
ठीक है,
एक ही समय में,
एक ही समय में, एक ही पर्याय, एक ही ज्ञान, एक ही पर्याय, एक ही अनुभव, दो बात है
नहीं।
कहने में दो बात है, वस्तु एक है, ऐसा कहते हैं। अब अनुभवी जीव का वर्णन करते हैं। सर्वतः स्वरस निर्भर भावम चेतये स्वयं अहम स्वस्वम इहम एकम स्वम इह एकम नास्ति नास्ति मम कश्चन मोह शुद्ध चिद घन महो निधिरस्मि। मनासी दासी का कलह है ना, मोहते मारो नथे हूँ एक शुद्ध चैतन्य निधि छो, एवो एक कलश आवे छे बनासीदास नाटक समय सार छे ने। आखो कलश शुद्ध चेतना सिंधु निधि एटले सिंधु, शुद्ध चेतना सिंधु तुम्हारो
रूप
है। त्रिस्मो एना ऊपर क कहे विचिषण पुरुष सदा में एक हूँ स्वम इहम एकम आयु ने कहे विचिक्षण विचिक्षण इतने ज्ञानी कहे विचिक्षण पुरुष सदा में एक हूँ अपने रस से भरो अपनी अपनी टेक हूँ स्वतः स्वरस निर्भर भाव स्वरस अपने रस से भरो अपनी टेक हूँ मोह कर्म मम नाही नाही जो वहाँ नास्ति नास्ति दो दफे लिया है ना नास्ति नास्ति मम मोह कष्टना तो मोह कर्म मम नाही नाही ब्रह्म कूप है शुद्ध चेतना सिंधु हमारो बहुत प्रसिद्ध है ये कलश है बहुत मनासी दास जी का पद ये प्रसिद्ध है अहम एकम स्वम स्वयं चेतये विभाव परिणाम छूट गए होने से किसको अनुभवी ज्ञानी को विभाव परिणाम छूट गए होने से मैंने स्वामित्व छूट गया अनादि निधन चिद्रूप वस्तु ऐसा मैं अनादि निधन मतलब तीनों काल शुद्ध चिद्रूप वस्तु ऐसा मैं एकम एकम मैंने समस्त भेद बुद्धि से रही द्रव गुण पर्याय उत्पाद वे द्रव कोई भेद बुद्धि उसमें नहीं है समस्त भेद बुद्धि से रहित शुद्ध वस्तु मात्र शुद्ध चिद्रूप मात्र वस्तु को परोपदेश के बिना ही देखो स्वयं का अर्थ क्या किया परोपदेश के बिना ही अपने में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप आस्वाता जब मुझे मेरा अनुभव होता है तो प्रत्यक्ष स्वसंवेदन आस्वाद आता है उसमें परोपदेश है नहीं देखो परोपदेश माने दिया स्वयं में परोप निमित्त निकाल दिया क्योंकि पुरुषार्थ तो अपने में अपने आप होता है निमित्त तो दूर रह जाता है भिन्न क्षेत्र में उपदेश का निमित्त तो भिन्न क्षेत्र में दूर रह गया यह अहम एकम स्वम स्वयं चंत संचेत ये मैं अपने आप से अपने का अनुभव करता हूं किसी की मदद बिना ऐसा कहने का अभिप्राय है परोपदेश के बिना ही अपने में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप से जो प्रत्यक्ष अर्थ के लेता है प्रत्यक्ष रूप से आस्वादता जैसे हम है ऐसा अब पर्याय में आस्वाद द्रव दृष्टि से जैसा मैं हूँ ऐसा अब मुझे पर्याय में आस्वाद आता है कि मैं ऐसा हूँ हाँ चेतिये इतले आस्वादता हूँ चेतुं इतले वेदवुं चेतुं इतले वेदवुं वेदवुं कहो आस्वादवुं कहो भोगवुं कहो त्रण एकार्थ छे कैसी है शुद्ध चिद्रूप वस्तु द्रव दृष्टि जो कोई कही शुद्ध चिद्रूप वस्तु वो कैसी है के सर्वतः स्वरस निर्भर भावम सर्वतः संख्यात प्रदेश में जैसे लवण में नमक में सर्वतः खारापना भरा है शक्कर में सर्वतः मीठापना भरा है ऐसे अपने प्रदेश प्रदेश में क्या भरा है चैतन्यपने से संपूर्ण है बेहद चैतन्य स्वभाव पर भरा हुआ एक किला चैतन 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 वज्र है आत्मा उसमें कोई प्रभाव परद्रव्य साता साता वेदनी का प्रवेश करने का अवकाश नहीं है परिपूर्ण संपूर्ण हूँ असंख्यात प्रदेशों में चैतन्यपने से संपूर्ण हूँ वो संपूर्णपना है सर्वस्व जिसका ऐसी शुद्ध मेरी वस्तु है ये सर्वस्व है मेरा स्वभाव जो है वो सर्वस्व है मेरा स्वभाव अगर मेरे में से निकल गया तो कुछ बचता नहीं, मैं खत्म हो गया। ये निकालते हैं ना, अर्क निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट जिसको कहते हैं, रस निकालते हैं, गन्ने में से रस निकालते हैं, इसके जिसकी शक्कर बनती है, कुचा निकल जाता है, आदू में से रस निकलता है कुचा, ऐसे चैतन्य रस से मैं भरा हुआ हूँ, इसलिए स्व रस निर्भर ऐसा लिया, रस लिया शब्द, मैं चैतन्य स्वभाव से संपूर्ण भरा हुआ हूँ, बस यही मेरा सर्वस्व है। तो ये अनुभव में ऐसा आता है, जो शुद्ध चिद्रूप वस्तु है वो असंख्य प्रदेश में अनंत चैतन्य स्वभाव से भरा हुआ हूँ, ऐसा अनुभव आता है। अब एक बहुत विशेष बात करते हैं इधर, भावार्थ इस प्रकार है कि कोई जानेगा कि जैन सिद्धांत का बार बार अभ्यास करने से दृढ़ प्रतीति होती है, उसका नाम अनुभव है, सो ऐसा नहीं है। जो शास्त्र माचवा वाला ने बात करी, राजमल जी बहुत अध्यात्म प्रधान प्रवक्ता थे और इस ग्रंथ में उन्होंने बहुत अध्यात्म प्रधान बात की। तो आगम और अध्यात्म में क्या फर्क है कि आगम एक भेद विकल्प वाला एक शास्त्राभ्यास, ज्ञानाभ्यास जिसको बोलने में आता है, ऐसा है, वास्तव में वो ज्ञानाभ्यास है नहीं, व्यवहार से ऐसा बोलने में आता है कि जो शास्त्र का अभ्यास करता है तो उसको बोलते हैं कि वो ज्ञानाभ्यास करता है, वास्तव में वो ज्ञानाभ्यास नहीं है। ज्ञान स्वभाव का अनुभव बार बार करते हैं उसको ज्ञानाभ्यास कहने में आता है, ज्ञान का स्वसंवेदन, ज्ञान से ज्ञान का बार बार स्वसंवेदन होवे उसको ज्ञानाभ्यास कहने में आता है। Okay, भावार्थ इस प्रकार है कि कोई जानेगा कि जैन सिद्धांत का बार बार अभ्यास करने से दृढ़ प्रतीति होती है, उसका नाम अनुभव है, सो ऐसा नहीं है। उसमें अभिप्राय क्या है कि जिसको अपना स्वयं का अध्यात्म अनुभव नहीं होता, अध्यात्म अनुभव मैंने आत्मा का आधार लेकर के, अवलंबन लेकर के जो अनुभव जिसको नहीं होता, उस जीव को कहाँ फंसना होता है, वो व्यापार धंधा नहीं करेगा, वो क्या करेगा कि जैन शास्त्र लेकर बैठ जाएगा और बार बार सिद्धांत ज्ञान का पठन पाठन अभ्यास करेगा और उस प्रकार की जो उनकी अभ्यास की, शास्त्राभ्यास की जो विशेष अभ्यास की पद्धति हुई उसमें उसको एक मान्यता हो जाएगी। ये मान्यता ऐसी हो जाएगी कि बहुत मैं पढ़ूंगा, बार बार पढ़ूंगा, मुझे दृढ़ता बढ़ जाएगी, मेरी दृढ़ता बढ़ जाएगी, दृढ़ता बनना वही अनुभव है, अनुभव में दृढ़ता होती है, तो मुझे मेरे भी दृढ़ता बढ़ गई है तो मुझे भी ये अनुभव है, यह अनुभव मुझे होगा, दृढ़ता करने से मुझे अनुभव होगा। ये अपने समय सारे एक दफे पढ़ लिया, अनुभव के लिए बहुत बढ़िया शास्त्र है, एक दफे पढ़ लिया, दूसरी दफे पढ़ेंगे और वो भी पढ़ लिया तो फिर तीसरी दफे पढ़ेंगे, और भी पढ़ लिया तो और वो एक दफे पढ़ेंगे, ऐसे अनुभव होता। ये लाइन गलत है, क्या कहते हैं, ये लाइन गलत है, ऐसा कहते हैं, हाँ मोटे थी जाए, 415 गाथा ने पीछे सुरतली शक्ति आ गई है, मोटे थी जाए, मोटे थी जाए बहु, मोटे थी जाए थी कहीं काम था तो ये दृढ़ता में कहीं डालिया था, ये वो घना ही मोटा था, मोटे था ये थी ठीक है શાસ્ત્રો છે એ સદગુરુ પાસે સાંભળવા એટલે જ્ઞાની પુરુષ પાસે સાંભળવા એમ કેવું છે. હવે કે જ્ઞાની ન હોય તો કોઈ સુપાત્ર જીવ હોય ને એની પાસેથી સાંભળજે, બે જગ્યા રાખે એમણે. કેમ કે અત્યારે તીર્થંકર નથી, મુનિ નથી, આ એમને ખબર છે. કોઈ કોઈ જ્ઞાની થાય છે તો કે આવા ગહન શાસ્ત્રો છે એ તારે સાંભળવા કે અધ્યયન કરવું હોય તો જ્ઞાનીના સાનિધ્યમાં બેસીને એના ચરણમાં બેસીને સાંભળે. તો જ્ઞાની ન હોય તો શું કરવું, ત્યારે શું કરવું? તો કે કોઈ સુપાત્ર જીવ હોય એના સાનિધ્યમાં એ વિચારવા એમ કહ્યું. અભિપ્રાય છે કેવા ગુરુ? સારું છે, પ્રત્યક્ષ કઈ ભાવમાં તો કઈ ખોટું નથી, ભાવમાં પ્રત્યક્ષ રાખવા એમાં કઈ વાંધો નથી. પણ ભાવમાં પ્રત્યક્ષ રાખીને દ્રવ્ય પ્રત્યક્ષ હોય તો એનો એની ઉપેક્ષા કરવી જોઈએ. હા, પ્રત્યક્ષ ન હોય તો ભાવમાં પ્રત્યક્ષ રાખવા, ઠીક વાત છે. પ્રત્યક્ષ ન હોય તો ભાવમાં પ્રત્યક્ષ રાખવા. અને એમણે તો સંયોગ અપેક્ષા એ વાત કરી છે કે જો સદગુરુનો જ્ઞાની પુરુષનો સંયોગ ન હોય તો કોઈ સુપાત્ર જીવના સંયોગમાં શાસ્ત્ર અધ્યયન કે સ્વાધ્યાય કરવો એવી ત્યાં શિખામણ આપે છે, માર્ગદર્શન આપ્યું છે. કેટલી વાત છે એકલો એકલો નહીં વાંચતો એમ કે છે, ઠીક છે, ચોખ્ખું કરાવે છે કે તું એકલો સમયસર લઈને ઘરે બેસી જા, એના કરતા કાં તો જ્ઞાની પુરુષના ચરણમાં જઈને બેસજે અને કાં કોઈ સુપાત્ર જીવના સંયોગમાં સાનિધ્યમાં તો એનો અધ્યયન કરજે. એકલો એકલો કરતો એ ભૂલ નહીં કરતો એમ કેવું છે. કેમ કે તને નહીં સમજાય, એક જ શબ્દના બે અર્થ થાય. એક જગ્યાએ જે શબ્દ આવતો હોય અનુભૂતિ ત્યાં ઉત્પાદવી ધ્રુવ થાય બીજી ગાથામાં, અને એ 17-18 ગાથામાં આત્મા એનો અર્થ થતો હોય, અનુભૂતિની ક્રિયા થતી હોય, 73માં આત્મા થતો હોય, શુદ્ધાત્મા થતો હોય, ત્રણેય જગ્યાએ જુદા જુદા અર્થ છે. તો એ તો તને શાસ્ત્ર નહીં કે આ તું સમજવા ફેર થઈ ગયું તારું, એ શાસ્ત્ર તને નહીં કહી શકે. શ્રી ગુરુ હોય તો સમજાવે, અથવા સુપાત્ર જીવ હોય તો આપસમાં ચર્ચા કરતા એનો તોડ નીકળે. આપણે કોઈ એવો જટિલ પ્રશ્ન હોય ત્યારે શું કરીએ છીએ? ભાઈ જરા સાથે બેસીએ, એનું કંઈક આપણે તોડ કાઢીએ, રસ્તો કાઢીએ. આમ કરવા જતાં આમ નુકસાન થાય છે ને આમ કરવા જતાં આમ નુકસાન થાય છે, હવે શું કરવું? એવી કોઈ વાત હોય ત્યારે શું કરે ભાઈ? એમ કરીએ કંઈક વચલો રસ્તો કાઢીએ, તો એનો વિચાર કરવો પડે સાથે બેસીને. એમ અહીંયા માર્ગ સૂક્ષ્મ છે, વ્યવહારાભાસી પણ ન થવું, નિશ્ચયાભાસી પણ ન થવું, અભ્યાભાસી પણ ન થવું, ત્યારે રસ્તો કાઢવો છે કે નહીં? એટલા માટે સત્સંગ આવશ્યક, મુમુક્ષુની ભૂમિકામાં અતિ આવશ્યક છે. આવશ્યક છે એમની પણ અતિ આવશ્યક છે. એ તો અનુભવ થાય છે ને, જ્યારે જે કાળે અનુભવ થાય છે ત્યારે પોતાના પુરુષાર્થથી અનુભવ થાય છે એમ કે છે. ઉપદેશ તો નિમિત્ત છે અને પુરુષાર્થ છે એ નિજ શક્તિ એટલે ઉપાદાન છે એમ કે છે. શું? તો ત્યાં નિજ શક્તિથી અનુભવ થાય છે એમ કેવું છે. સ્વયંનો અર્થ કર્યો છે, સ્વયં એટલે પોતાની મેળે અનુભવ થાય છે, પોતાની મેળે થાય છે, અપને આપ સે હોતા હૈ. હા, ત્યાં પરમ ગુરુના ઉપદેશની વાત લીધી ને અહીંયા કહે છે કે પરોપદેશ વિના પરસ્પર વિરુદ્ધ વાત લખી
ક્યા
નહીં. નિમિત્ત હોતા હૈ લેકિન નિમિત્ત સે કામ હોતા નહીં, બિના નિમિત્ત ભી નહીં ઓર નિમિત્ત સે ભી નહીં. દોનો માને તો દોનો મિથ્યાત્વ હૈ, નિમિત્ત સે માને તો ભી મિથ્યાત્વ, બિના નિમિત્ત સે માને તો ભી મિથ્યાત્વ. वो परस्पर विरुद्ध लगता है लेकिन है नहीं. तो अनुभव किसको कहते हैं कि मिथ्यात्व कर्म का रसपाक मिटने पर क्या द्रव्य कर्मों और भाव कर्म में मिथ्यात्व का रस पाक मिटने पर अनुभाग मिटने पर मंद रस वाला हो जाता है, तब मिथ्यात्व भाव रूप परिणमन मिटता है. कभी मिथ्यात्व भाव अनुभाग टूटे बिना नहीं मिटता, क्योंकि पहले उपशम होता है ना तो दबता है. कौन दबता है कि जिसका शक्ति कम हो गया वो ही दबता है. शक्ति वाला कभी दबेगा
नहीं.
तो मिथ्यात्व कर्म का रस पाक मिटने पर मिथ्यात्व भाव रूप परिणमन मिटता है, तब वस्तु स्वरूप का प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद आता है, अनुभव आता है. त्यारे मिथ्यात्व का उदय कभी रहता नहीं है, उसी का नाम अनुभव है. जीव वस्तु का वस्तु स्वरूप का प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद है, उसका नाम अनुभव है. शास्त्र पढ़ करके दृढ़ता हो गई उसका नाम अनुभव नहीं है, वो तो विकल्प है. और अनुभवशील जैसे अनुभवता है वैसा कहते हैं. अब अनुभवशील का अनुभव कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, उसका वर्णन नीचे करेंगे.
कहा